ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग से संबंधित कानून को समय अनुकूल बनाने की आवश्यकता पर संसदीय समिति में सांसदों ने दिया जोर। कानून मंत्री सोभिता गौतम ने अनुसंधान और अभियोजन के मापदंड स्पष्ट किए जाने का दिया सुझाव। स्वदेशी उत्पादों और सेवाओं के उपयोग को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय ने सभी सरकारी निकायों से किया आग्रह। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नेकपा एमाले के किरण थापा मगर नियुक्त और रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले में 16 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के सभापति रवि लामिछाने ने स्पष्ट किया है कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। प्रतिनिधि सभा की राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति की बैठक में लामिछाने ने आयोग के पदाधिकारियों से निष्पक्ष और बिना पूर्वाग्रह काम कर इतिहास बनाने का आग्रह किया। उन्होंने भ्रष्टाचार की जांच और अभियोजन को व्यवस्थित एवं वस्तुनिष्ठ बनाने पर जोर दिया। कानून मंत्री सोभिता गौतम ने अख्तियार को राजनीतिक प्रतिशोध या व्यक्तिगत दुश्मनी का माध्यम बनाने से रोकने तथा जांच और अभियोजन का स्पष्ट मापदंड तय करने की आवश्यकता बताई। अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राय ने आयोग तथ्य और प्रमाण के आधार पर काम करने तथा पर्याप्त प्रमाण न मिलने पर जल्दबाजी में मुकदमा दायर न करने स्पष्ट किया। सांसदों ने आयोग से जुड़ा कानून समयानुकूल बनाने और नीतिगत निर्णयों की स्पष्ट परिभाषा तय करने की मांग की। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय ने सभी सरकारी निकायों से स्वदेशी उत्पादों और सेवाओं के उपयोग को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के निर्देश पर सभी सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक खरीद से संबंधित मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत इस व्यवस्था का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय ने बुधवार को एक बयान जारी करते हुए संघीय मंत्रालयों, आयोगों, सचिवालयों, प्रदेश सरकारों, स्थानीय तहों और विदेशों में स्थित नेपाली राजनयिक मशीनों सहित सभी सार्वजनिक निकायों से अपनी खरीद प्रक्रियाओं में नेपाली उत्पादों को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में घरेलू उत्पादन के योगदान को बढ़ाने, बढ़ते आयात को प्रतिस्थापित कर स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने, स्थानीय कौशल और उद्यमों का संरक्षण करने तथा देश में ही रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। इसके तहत मौजूदा कानूनी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। अब से सरकारी कार्यालयों में होने वाली बैठकों, समारोहों, उपहारों और सजावट में जहां तक संभव हो नेपाली हस्तशिल्प से बने उत्पादों का ही उपयोग करने की व्यवस्था करनी होगी। बागमती प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री किरण थापा मगर ने आज पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। हेठौड़ा स्थित प्रदेश प्रमुख कार्यालय में प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटा ने उन्हें शपथ दिलाई। प्रदेश प्रमुख देवकोटा ने संविधान की धारा 168 की उपधारा 2 के तहत थापा मगर को मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। उन्हें नेकपा एमाले के साथ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा का समर्थन प्राप्त है। सूचना एवं संचार मंत्री डॉ विक्रम तिमल सिन्हा ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन को व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी, प्रभावी और जन उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता बताई है। उन्होंने रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन की सामग्री की गुणवत्ता बढ़ाने तथा डिजिटल माध्यम में प्रभावी उपस्थिति मजबूत करने पर जोर दिया। मंत्री ने प्रशासन और लेखा शाखाओं को एकीकृत करने का सुझाव भी दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं पर्यटन समिति की बैठक में सरकार वालाओं ने पर्यटन क्षेत्र को दीर्घकालीन और प्रभावी बनाने के लिए पर्यटन विधेयक 2081 लाने पर जोर दिया। होटल एसोसिएशन नेपाल हान के अध्यक्ष विनायक शाह ने ग्रीन, आरोग्य, धार्मिक और वैवाहिक पर्यटन जैसे नए क्षेत्रों को विधेयक में शामिल करने की मांग की। उन्होंने 4 और 5 सितारा होटलों से संबंधित प्रावधानों में सुधार तथा होटल को कैसीनो संचालन के बदले 10% शेयर देने की अनिवार्यता हटाने का सुझाव दिया। प्रतिनिधि सभा की सार्वजनिक लेखा समिति ने विदेशी सहायता को यथासंभव राष्ट्रीय प्रणाली और सरकारी कोष के माध्यम से परिचालन करने तथा उसे लेखा परीक्षण के दायरे में लाने का निर्देश दिया। समिति की आज की बैठक ने विदेशी सहायता के लेखा परीक्षण समेत विभिन्न विषयों पर 9 सूत्रीय निर्देश जारी किए। समिति सभापति भरत बहादुर खड़का ने बताया कि कार्यक्रम से सीधे संबंधित विदेशी विकास सहायता को ही स्वीकार और परिचालन करने की व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक 2081 पर प्रतिनिधि सभा की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति की बैठक में चर्चा हुई है। बैठक में विधेयक की धारा 24 से अंतिम धारा तक विचार विमर्श किया गया। कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति, योग्यता, काम, कर्तव्य और अधिकार समेत विभिन्न प्रावधानों पर संशोधन सहित चर्चा हुई। विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मंत्री महावीर पुन ने उठे सवालों का जवाब दिया। रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं समाचार, अभी कुछ देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। राष्ट्रीय सभा की विधान व्यवस्थापन समिति की बैठक में गांवपालिका राष्ट्रीय महासंघ ने संघीय संसद से समय पर आवश्यक मार्गदर्शन और सहयोग नहीं मिलने की शिकायत की। महासंघ की अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पांडे ने संविधान के प्रभावी कार्यान्वयन और तीनों तहों की सरकारों के बीच संबंध मजबूत करने के लिए विधायकी अंतर संबंध में सुधार की आवश्यकता बताई। महासंघ के कार्यकारी निर्देशक राजेंद्र प्रसाद प्याकुरेल ने कहा कि स्थानीय सरकार सेवा प्रवाह में बेहतर है, लेकिन केंद्र और प्रदेश का ज्ञान एवं सिप स्थानीय तह तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। सूचना एवं संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा ने पत्र पत्रिकाओं के वर्गीकरण और लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण प्रणाली को पारदर्शी, व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने के लिए सुधार प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय में आज सूचना एवं प्रसारण विभाग और प्रेस काउंसिल नेपाल के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने वास्तविक प्रकाशन एवं वितरण संख्या सुनिश्चित करने, वर्गीकरण के आधार स्पष्ट करने और विज्ञापन वितरण को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन के लिए मौसम एवं आपदा संबंधी जनचेतनामूलक सामग्री निर्माण पर एक दिवसीय कार्यशाला आज संपन्न हुई। रेडियो नेपाल सिंहदरबार में आयोजित कार्यशाला में सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल और बीबीसी मीडिया एक्शन के सहकार्य में मौसम एवं आपदा के दौरान नागरिकों की जागरूकता, पूर्व तैयारी और सावधानी से जुड़े डिजिटल वीडियो सामग्री निर्माण पर चर्चा हुई। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के और आसपास के क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार हमले में कम से कम 16 लोगों की मौत हुई है और 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हमले में बैलिस्टिक क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। कीव के कई इलाकों में आवासीय भवन, स्कूल के बच्चों का अस्पताल और अन्य नागरिक संरचनाएं क्षतिग्रस्त हुई है। किबके सोलोमियास्की जिले में एक 9 मंजिला आवासीय भवन को भारी नुकसान पहुंचा, जहां कई लोगों की मौत हुई। हमले के बाद राहत और बचाव कर्मी मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइलों सहित अतिरिक्त रक्षा सहायता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि वायु रक्षा प्रणाली के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलों को कमी से नागरिकों की जान जा रही है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग से संबंधित कानून को समयानुकूल बनाने की आवश्यकता पर संसदीय समिति में सांसदों ने दिया जोर। कानून मंत्री शोभिता गौतम ने अनुसंधान और अभियोजन के मापदंड स्पष्ट किए जाने का दिया सुझाव। स्वदेशी उत्पादों और सेवाओं के उपयोग को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय ने सभी सरकारी निकायों से किया आग्रह। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नेकपा एमाले के किरण थापा मगर नियुक्त और रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले में 16 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।